प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बाइबल की मार्गदर्शक रूपरेखा देखेंगे। पवित्र शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है और इसे एक अनोखी पुस्तक क्यों कहा गया है और इसे परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन क्यों कहा जाता है, इन बातों पर विचार करेंगे। साथ ही हम देखेंगे प्रकाशन, प्रेरणा, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या का क्या अर्थ है तथा बाइबल और उसके प्रत्येक अध्याय का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है सहारा, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे, जीवन के पथ पर ले चल प्रभु चलना सिखा दे, चलना सिखा दे, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है सहारा।
प्रिय श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में आपका फिर से स्वागत है। हम उन नए श्रोता मित्रों का भी स्वागत करते हैं जो इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं। हम उन नए श्रोताओं को बता दें कि हम इस कार्यक्रम में बाइबल अध्ययन की रूपरेखा देख रहे हैं ताकि हम बाइबल का अध्ययन सरलता पूर्वक कर सकें। पिछले अध्ययनों में हमने 5 मुख्य कारणों पर विचार किया कि क्या पवित्र बाइबल परमेश्वर की ओर से है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपके सामने उन 5 कारणों को दोहराना चाहता हूँ। पहला कारण था पवित्र बाइबल का सुरक्षित होना या रखा जाना। दूसरा, पुरावशेष विभाग का प्रमाण देना। तीसरा, भविष्यवाणियों का पूरा होना। चौथा, परिवर्तित जीवन या बदला हुआ जीवन। और पांचवा है, परमेश्वर का आत्मा वचन को वास्तविक बनाता है और इसके लिए हमने कई प्रमाणों को भी देखा है। आज हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करेंगे, जैसे प्रकाशन क्या है, प्रेरणा, स्पष्टीकरण और व्याख्या करना क्या है। तो इससे पहले कि हम इन विषयों पर अध्ययन करें, आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है कि कि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब सुनने वालों के हृदय व विचारों को खोल दें, ताकि आज हम जो कुछ भी सीखते हैं हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सके। आप हम सब की सहायता करें और हर एक चिंता व निराशा से छुटकारा दें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय श्रोता, आइए हम पवित्र बाइबल से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को भी देखें। पहला प्रश्न देखेंगे कि प्रकाशन अर्थात रेवलेशन क्या है। प्रकाशन या प्रकटन का अर्थ है कि परमेश्वर ने बातें की। पवित्र बाइबल में परमेश्वर ऐसा कहता है शब्द 2500 बार प्रयोग किया गया है। यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य से बातें करके अपना संदेश दिया अर्थात प्रकट किया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस विषय को लेकर दुविधा में रहें कि परमेश्वर ने मनुष्य से कहा या बातें की या परमेश्वर कहाँ बोला। हम इब्रानियों की पत्री उसके एक अध्याय 1-2 में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों से बातें की। तो आइए हम इसे स्पष्ट करने के लिए इन पदों को पढ़ें। इब्रानियों की पत्री उसका 1:1-2। इब्रानियों की पत्री 1:1-2। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। बाइबल के इस पद के अनुसार यह स्पष्ट है कि परमेश्वर प्राचीन समय से ही मनुष्यों के साथ बातचीत कर रहा है, अर्थात अपने संदेश को मनुष्यों के बीच में पहुंचाते रहा है, और इस कार्य के लिए उसने नबियों का उपयोग किया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के साथ संपर्क रखना चाहता है, मनुष्य से बातचीत करना चाहता है। जब हम दो व्यक्तियों को एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ या करीब पाते हैं तो उनके मध्य जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है उनके एक जैसे विचार, इच्छाएं या भावनाएं, जो एक दूसरे की ओर उन्हें आकर्षित करती है। आप उनके बीच वार्तालाप अधिक देखेंगे। ऐसी बातों में समानता रखने वाले व्यक्ति जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो वे एक दूसरे के विषय में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं और एक दूसरे से मिलकर या जानकर बड़े खुश होते हैं। मानव का यह स्वभाव है कि जब उसे पत्र, टेलीग्राम, फोन मिलता है तो इसे पता चलता है कि मित्र मित्र के साथ वार्तालाप कर रहा है। वे अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के लिए एक विशेष संचार का प्रयोग करते हैं, ताकि वे एक दूसरे से संपर्क में रह सकें। मनुष्य के हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने में और उन्हें एक दूसरे के समीप लाने में सबसे महत्वपूर्ण सेवा डाक विभाग की, टेलीफोन विभाग की और ईमेल विभाग की होती है। दोस्त अपने दोस्त के साथ संपर्क में रहना चाहता है। पति जो परदेश में रहता है वह अपनी पत्नी को पत्र लिखता है या टेलीफोन करता है। बेटा या बेटी जो हॉस्टल में अपने माता पिता से दूर रहते हैं वे पत्र लिखते हैं या फोन करते हैं। एक प्रेमी प्रेमिका को पत्र लिखता है और उत्तर भी प्राप्त करता है। यह समस्त बातचीत की क्रिया या संचार कहलाती है और इसके द्वारा हृदय की बातों को व्यक्त किया जाता है। मुझे किसी ने एक महिला के बारे में बताया जिसका नाम हेलेन केलर था। वह न तो देख सकती थी और न ही सुन सकती थी। वास्तव में यह समय उसके लिए बहुत कठिन समय था क्योंकि उसे किसी के साथ संपर्क स्थापित करने में काफी कठिनाई होती थी। लेकिन कुछ समय के बाद उसके लिए एक ऐसा मार्ग खुला कि वह लोगों से संपर्क स्थापित कर सकी। इतना ही नहीं, वह इतनी तेज हो गई कि वह देखने और सुनने वालों से भी अधिक उत्तम रीति से अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने लगी। उसने कई गीतों को लिखा जिसे आज भी हम गाते हैं। यह सब कुछ तभी संभव है जब आपके पास संचार के साधन हैं और दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं हो रही हो। जिस प्रकार परमेश्वर ने नबियों के द्वारा मनुष्यों से बातें की और नबियों ने मनुष्यों की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाया, नबी संचार का साधन बना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी व्यक्ति से दूर रहकर उसके बारे में ज्यादा नहीं जान सकता है। इसलिए परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि वह स्वयं मनुष्य के रूप में हमारे मध्य में आए, ताकि वह परमेश्वर के स्वभाव को मनुष्यों के बीच व्यक्त कर सके। परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्यों पर प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्यों से आमने सामने बातें की। अब इसी के आधार पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि यह प्रश्न निश्चय ही तर्कसंगत और बुद्धिपूर्ण होगा कि परमेश्वर, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और बुद्धि से परिपूर्ण किया, तो क्या यह बुद्धिपूर्ण बात नहीं होगी कि परमेश्वर उससे बातें करे, उससे संपर्क करे? यदि हमें परमेश्वर से प्रकाशन नहीं मिला होता तो मैं सोचता हूँ कि मुझे और आपको इंतजार करने की जरूरत पड़ती ताकि वह हमसे बातें करे। क्योंकि यदि हमें प्रकाशन नहीं मिला होता तो पुराने नियम की तरह परमेश्वर अवश्य हमसे बातें करते, क्योंकि हम परमेश्वर से यह उम्मीद करते कि परमेश्वर हमसे बातें करे। इब्रानियों के पत्री के लेखक के अनुसार पुराने नियम में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानव से बातचीत की, और अब अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बातचीत की। इस प्रकार दोनों प्रकाशन, चाहे वे पुराने नियम में भविष्यवक्ता के द्वारा हो या नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये दोनों प्रकाशन परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। और सच्ची बात तो यह है कि संपर्क स्थापित करने के लिए हमारे पास ये दो प्रकाशन हैं। इन दोनों में से एक के द्वारा हम संपर्क के विषय में जान सकते हैं। पवित्र बाइबल में कुल 66 पुस्तकें हैं और परमेश्वर ने इनमें से प्रत्येक पुस्तक के द्वारा हमसे बातें की है। प्रिय श्रोता, हमने अभी प्रकाशन के बारे में देखा है, पुराने नियम का प्रकाशन और नए नियम का प्रकाशन, जिसमें हमने नबी को पुराने नियम में और प्रभु यीशु को नए नियम में देखा है। इस प्रकाशन को अधिक समझने के लिए मैं आपके सामने दो प्रकाशन रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने आप को हम पर किस रीति से प्रकट किया। तो आइए हम देखें साधारण प्रकाशन, अर्थात जनरल रेवलेशन। साधारण प्रकाशन वह है जिसमें परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टि के द्वारा मनुष्यों पर प्रकट किया। उसने शब्दों के द्वारा सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे और हरेक प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया। उसने शब्द कहा और वैसा ही हो गया, परंतु उसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसे जीवित प्राणी बना दिया। ये सारी सृष्टि उसकी रचना है, और इस रचना को देखकर मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि इस संसार को बनाने वाला कोई रचयिता है जिसने इस संसार को बनाया है, और वही इसका स्वामी भी है। जी हाँ मित्रों, परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा मनुष्यों को बताने का प्रयत्न किया कि वह परमेश्वर है, परंतु मनुष्यों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब उसने समय के अंतराल में नबियों को नियुक्त किया जिनके माध्यम से उसने अपने संदेशों को पहुंचाने का प्रयत्न किया, अर्थात मनुष्यों से बातचीत की। यह एक साधारण प्रकाशन था जो सृष्टि के माध्यम से परमेश्वर अपनी उपस्थिति प्रकट कर रहा था। पुराने नियम में परमेश्वर ने कई बार अपने आप को अपने भक्तों और नबियों पर प्रकट किया, जैसे मूसा और अब्राहम। परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट करने के लिए एक मार्ग को चुन लिया ताकि हम उसे और अधिक जान सकें। सारी सृष्टि उसकी उपस्थिति या अस्तित्व की गवाही देती है कि यह उसका प्रकाशन है। पवित्र बाइबल की पुस्तक भजन संहिता 19 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 4 पद में सृष्टि परमेश्वर की महिमा करती है। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। प्रिय श्रोता, इस वचन के अनुसार परमेश्वर के अस्तित्व और उसके सामर्थ को उसकी सृष्टि में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसकी सजावट, जटिलता और अद्भुत रचना अस्तित्व में रहने वाले सामर्थ्य और महिमामय रचियता से कहती है। इसी प्रकार रोमियो की पत्री उसके एक अध्याय और उसके 20 पद में साधारण प्रकाशन की चर्चा की गई है, क्योंकि उसके अनदेखी गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। प्रिय श्रोता, जब हम भजन संहिता 19 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 4 पद और रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 20 पद को देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि ये दोनों बाइबल पद परमेश्वर के अनंत सामर्थ और पवित्र स्वभाव की शिक्षा देते हैं, जिसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते और समझ सकते हैं। इसलिए इस सत्यता से इनकार करने के लिए हम कोई बहाना नहीं बना सकते। पवित्र वचन के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर का साधारण प्रकाशन सब लोगों के लिए है, सब समय के लोगों के लिए है और सभी जगह के लोगों के लिए है, जो यह प्रमाणित करता है कि परमेश्वर है और वह ज्ञानी, शक्तिशाली और सबसे श्रेष्ठ है जो इस जगत का रचियता है, ताकि कोई मनुष्य यह न कहने पाए कि वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर इस बात की समझ दी गई है कि वह सृष्टि को देखकर समझ सकता है कि इसका बनाने वाला कोई है और वह परमेश्वर है। हमें ये सब बातें पवित्र वचन के द्वारा मालूम होती है कि परमेश्वर ने सृष्टि के माध्यम से मनुष्यों से बात की। प्रिय श्रोता, परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्यों पर प्रकट करने के लिए दो प्रकार के प्रकाशन को प्रयोग किया। जनरल रेवलेशन अर्थात साधारण प्रकाशन, जिसका अध्ययन हमने अभी किया, और दूसरा यह है विशेष प्रकाशन यानी स्पेशल रेवलेशन। अभी तक हमने साधारण प्रकाशन में प्राकृतिक या सृष्टि के सत्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करने के बारे में देखा, लेकिन अब हम एक विशेष प्रकाशन पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। इस प्रकाशन में हम विशिष्ट सच्चाई को पाते हैं और इस सच्चाई को हम परमेश्वर की अलौकिक शक्ति के द्वारा जान सकते हैं। विशेष प्रकाशन में हम यह भी पाते हैं कि परमेश्वर अपने आप को मनुष्यों पर प्रकट करने के लिए एक चमत्कारी माध्यम या साधन का उपयोग करता है। विशेष प्रकाशन के अंतर्गत परमेश्वर का शारीरिक रूप में उपस्थित होना, स्वप्न, दर्शन और पवित्र वचन के द्वारा अपने को प्रकट करना है। परंतु सबसे बढ़कर और महत्वपूर्ण प्रकटीकरण यीशु मसीह है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कई बार मनुष्यों के बीच प्रकट हुआ। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 8 पद। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद, इसमें परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए अदन की वाटिका में आया। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। और इसी प्रकार उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, इब्राहिम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। इसी प्रकार हम बाइबल में यह भी पाते हैं कि परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा भी लोगों से बातें की, जैसे उत्पत्ति उसका 28 अध्याय और 12 पद। उत्पत्ति 28 अध्याय उसके 12 पद में, याकूब ने सपने में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। और उत्पत्ति 37 अध्याय और उसके 5 पद में, उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 5 पद में, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। इसी प्रकार परमेश्वर न केवल स्वप्न में परंतु दर्शन के द्वारा भी बातें की। उत्पत्ति 15 अध्याय उसके एक पद, यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्यों पर प्रकट किया। उसने पवित्र वचन के द्वारा भी बातें की। इस विशेष प्रकाशन में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु येसु मसीह को जगत में मनुष्य के रूप में भेज दिया ताकि वह मनुष्यों के बीच रहकर परमेश्वर पिता को प्रकट करे। कुलुशियों की पत्री उसका एक अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। और आगे यह भी लिखा है कुलुशियों उसके 2 अध्याय उसके 9 पद में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। जी हाँ, येसु हमारे बीच में रहे और मनुष्यों से आमने सामने बातचीत की, उनसे हर समय संपर्क रखा, उनकी जरूरतों के समय उनकी सहायता की, लोगों को उसने बीमारों से, दुष्टात्मा से और अनेक बंधनों से छुटकारा दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और 14 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु देह धारण कर हमारे मध्य में 35.5 साल तक रहे और परमेश्वर के स्वभाव को हमें बताते और सिखाते रहे, क्योंकि प्रभु यीशु एक विशेष योजना के अंतर्गत एक विशेष प्रकाशन थे। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, यूहन्ना 1 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। अर्थात यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच प्रकट किया। परमेश्वर सीधे रूप में मनुष्यों से बातें कर रहे थे ताकि मनुष्यों के लिए उद्धार के कार्य को पूरा करे और उन्हें छुटकारा दे। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ही विशेष प्रकाशन है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में रहने के लिए आ गए ताकि हम उसे नजदीकी से जान सकें, बातचीत कर सकें। वो हमारे दुख और सुख में शामिल हुए। इससे बढ़कर हमें एक और कौन सा प्रकाशन चाहिए? क्योंकि दो ही मुख्य प्रकाशन है, साधारण प्रकाशन जिसमें परमेश्वर दूर से मनुष्यों से बातें करते रहे, परंतु विशेष प्रकाशन में वे स्वयं स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर आ गए ताकि वह हमारे साथ आमने सामने संपर्क रख सके, हमारे लिए उद्धार की योजना के कार्य को पूरा कर सके। इन दोनों प्रकाशनों का बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बातें की हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रकाशन को समझना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है ताकि हम उसके वचन को और गहरे रूप से समझ सकें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों पर इन्हीं दो प्रकाशनों के माध्यम से अपने आप को प्रकट किया है ताकि हम उस महान परमेश्वर को नजदीकी से जान सकें, उससे संपर्क कर सकें। परमेश्वर ने हमसे अपनी सृष्टि के द्वारा, स्वप्न और दर्शन के द्वारा, नबियों के द्वारा, अपने पवित्र और जीवित वचन के द्वारा और अपने पुत्र येसु मसीह के द्वारा हमसे बातें की है। उपर्युक्त सभी साधनों को परमेश्वर ने मनुष्यों से संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग किया ताकि हम उसके निकट बने रहें और सिर्फ उसी की महिमा और स्तुति करें। बाइबल के एक पाठक ने इस प्रकार से लिखा है, इस पुस्तक में परमेश्वर का मन, मनुष्य की दशा, उद्धार का मार्ग, पापियों का विनाश और विश्वासियों की खुशी भरी हुई है। इसके धार्मिक सिद्धांत पवित्र, इसके नियम या आदेश एक दूसरे को जोड़ने वाले हैं। इस पुस्तक में लिखे गए इतिहास सच्चे और निर्णय अपरिवर्तनीय हैं, अर्थात इसके निर्णय को नहीं बदला जा सकता है। इसलिए इसको पढ़ना, समझ प्राप्त करना है और इस पर विश्वास लाना, सुरक्षित होना है और इसका जीवन में अभ्यास करना या इसके अनुसार चलना पवित्र बनना है। इसमें आपका मार्गदर्शन करने की पर्याप्त सामग्री है, आपकी आत्मिक तृप्ति के लिए पर्याप्त भोजन है और आपको प्रसन्न रखने के लिए भरपूर आनंद व शांति है। यह यात्रियों के लिए मानचित्र, तीर्थ यात्रियों के लिए छड़ी, वायुयान या जहाज चलाने वाले चालक के लिए दिशा यंत्र है, एक सैनिक के लिए तलवार और मसीही व्यक्ति का चरित्र है। यहाँ पर स्वर्गलोक पुनः स्थापित हुआ है, अर्थात स्वर्गलोक खुल गया और नरक का द्वार प्रकट हो गया है। प्रभु यीशु इसका गौरवशाली विषय है, हमारी भलाई इसकी परिकल्पना है और इसका अंत परमेश्वर की महिमा है। इसे हमारे हृदय पर शासन करना चाहिए, हमें स्मरण शक्ति से भरना चाहिए और इसे हमारे कदमों का मार्गदर्शन करना चाहिए। इसलिए आप इसे धीमी गति से निरंतर प्रार्थना के साथ पढ़ें। इसे जीवन में आपको दिया गया है और यह न्याय के दिन खुलेगी और हमेशा तक स्मरण की जाएगी। इसमें उच्चतम श्रेणी का उत्तरदायित्व शामिल है जो महान परिश्रम के लिए प्रतिफल प्रदान करेगी और उन सबको दोषी ठहराएगी जो इसकी बातों को तुच्छ जानते हैं। प्रिय श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन से आपको अवश्य ही सहायता पहुंची है। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हम सबको अपनी प्रकाशन समझाए ताकि हम परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर सकें। हमारे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
शालोम इंटरनेशनल गॉस्पेल म्यूजिक मिनिस्ट्री आभार मानता है प्रभु यीशु का, जो हम आपके सामने ये पुकार वॉल्यूम 8 को सीडी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका श्रेय मात्र उस महान प्रभु यीशु मसीह को जाता है, जो इस जग के तारनहार है। आमीन।